يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دوسری خوبصورت چیز جو آپ کو مجھے کرنی ہے اور وہ کیا؟ اے لوگو جی ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. دوسری چیز تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا خوف. آپ دیکھیے کہ تقویٰ کے لینس سے جب ہم دنیا کو دیکھیں گے نا تو ہمیں ہدایت نظر آئے گی, اور جتنا تقویٰ زیادہ اتنا رعب زیادہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے سے ڈر کر چلو, تم میری خوشیوں کو سامنے رکھو. آج کے مسلمان کو یہ سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں یہ جو بات کہہ دی گئی نا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر جب تک کہ تم اسلام پہ ہو, کیا مطلب؟ تمہاری پوری زندگی اللہ اس واچنگ می پہ گھوم جائے, گاڈ کانشیسنیس تمہاری زندگی میں آ جائے. تمہیں نہیں پتا تم کب مرو گے, تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں کب موت آنی ہے, تو ہر وقت تقویٰ رکھو. ہر نعمت کا سرا جب رب سے جڑے گا نا تو خود بہت تقویٰ آئے گا. خوشی آئی اللہ نے دی ہے, اس خوشی میں اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. کوئی اگر غم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, تو تقویٰ, اور تقویٰ خاص طور پہ کہہ کہ اپنی زندگی کو اسلام کے طریقوں پر چلائیے. آپ دیکھیے کہ پارہ نمبر 1 میں 9 دفعہ تقویٰ کا لفظ آیا تھا, پارہ 2 میں شاید 6-7 دفعہ آیا, اور اس پورے پارے میں بھی آپ بار بار تقویٰ کی بات پڑھیں گے. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو دین کے اندر شبہ کی بھی چیزیں ہیں اس کو بھی دیکھنے لگو. ہر بلیک اینڈ وائٹ کے بیچ میں گرے ایریا ہوتا ہے, گرے ایریے کو بھی چھوڑ دو. کیونکہ آپ دیکھیے کسی ملک میں قانون کو توڑنا چھوٹا جرم نہیں ہوتا. اگنورنگ دا لا از ناٹ این ایکسکیوز. آپ آئیں اس ملک میں اور سیٹ بیلٹ نہ باندھیں اور آپ کو پولیس جب ٹکٹ دینے لگے تو آپ کہیں مجھے پتہ نہیں تھا, میں نے آپ کا قانون پڑھا نہیں, تو کیا وہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ وہ کہیں گے یہ پے کیجیے اور یہ ٹکٹ اپنے پاس رکھیے اور اس سے آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. تو اب اگر آج ہم یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں, ہم نے جانا نہیں, تو کیا بچیں گے؟ تو جب تک پڑھیں گے نہیں, جب تک اس کتاب کو سمجھیں گے نہیں, کب اللہ کا تقویٰ پیدا ہوگا؟ یہ پورا قرآن آپ کو مجھے متقی بناتا ہے. ہدایت کے ساتھ تو اس کتاب کا سرا جڑا ہی ہوا ہے. تو لہٰذا فکر اس بات کی کریں کہ ہماری زندگیاں تقویٰ والی زندگیاں ہوں. پارٹ ٹائم نہیں, پارشل نہیں, وقتی بات نہیں. اور پھر اس کے بعد اگلی چیز جو اس سے بھی اہم ہے, تیسری چیز آ رہی ہے, اور وہ کیا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کی رسی سے یہاں کیا مراد ہے؟ صحابہ کی تفسیر ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہاں حبل اللہ سے مراد القرآن ہے. القرآن ہوا حبل اللہ المتین, جو اللہ نے آسمان سے لٹکائی, یہ قرآن ہے. یاد رکھیے تیسرا بڑا مسئلہ جس سے اس وقت امت دوچار ہے, وہ تفرقے بازی ہے. کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ لگے سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ کس مسلک سے ہیں, کس فرقے سے ہیں, کس گروہ سے ہیں؟ سارے فرقوں مسلکوں گروہوں کو ایک کرنے کا ایک راز, ایک نسخہ جس کو آپ ایک لفظ میں پرو دیں, وحدت امت کا راز, قرآن کو تھام لو. دیکھیے کوئی مسلک کوئی گروہ یہ کہتا ہے کہ قرآن نہ پڑھو, حدیث کو نہ مانو, سب مانتے ہیں نا. ہر فرقہ, ہر مسلک, ہر عالم دین قرآن اور حدیث ہی کی بات کرتا ہے نا, تو کیوں نہ ہم اس قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ پکڑ لیں. اصل سورس آپ دیکھیں, سونا اصلی کہاں ہوگا؟ جہاں سے وہ نکلتا ہے. ہو سکتا ہے جیولر نے اس میں لوہا ڈال دیا, چاندی ڈال دی, لیکن امید ہے کچھ نہ بھی ڈالا اور ڈالا بھی ہو سکتا ہے. دودھ کہاں سے خالص ملے گا؟ جہاں سے بھینس سے ملتا ہے. آپ دکان سے لاتے ہیں, ہو سکتا ہے اس نے پانی ڈال دیا, اس میں پاؤڈر ڈال دیا, کیا ڈال دیا. پیور چیز پیور ریسورسز پہ ہوتی ہے, ریئل ریسورسز. اس وقت آپ دیکھیے میں نے اور آپ نے قرآن کھولا ہوا ہے نا, ماشاء اللہ آج ہمارا سامنے دیکھیے کہ یہ چھٹا دن ہے. کیا آپ بور ہوئے یا آپ کو لگا اس اسٹیج پہ بیٹھ کر کسی ایک موقع پہ آپ نے میری زبان سے کوئی ایسی بات سنی کہ میرے استاد یہ کہتے ہیں, میرے ٹیچرس یہ کہتے ہیں, میرے امام صاحب یہ کہتے ہیں, ہمارے مفتی صاحب کا یہ فتویٰ. آپ نے تو مجھے بھی 4-6-7 دن سے سننا شروع کیا ہے. جو لوگ پچھلے 20 سال سے جو دیکھ رہے ہیں, اس زبان سے ایک ہی جملہ ہے, قال اللہ وقال الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی بات. اس کی جو بات آپ کو صحیح پروفڈ مل گئی اس کو لے لیجئے. آپ کو مجھے بہت بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم کیوں دینداروں کو لڑائیں یا جھگڑائیں؟ آپ اس قرآن کو جو آج تھام کے بیٹھ گئے ہیں نا, اس کو اب ساری زندگی نہ چھوڑیں. आप देखिएगा इंशाल्लाह यही चीज है जो सबको जोड़ेगी। और फरमाए अल्लाह की एहसान को याद रखो जो इसने तुम पर किया, तुम्हें एक दूसरे के दुश्मन थे, इसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और इसके फजलो करम से तुम भाई भाई बन गए। तुम आग से बड़े हुए घड़े के किनारे पर खड़े थे, अल्लाह ने तुमको इससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह अपनी निशानियां तुम्हारे सामने रोशन करता है, शायद की इन अलामतों से तुम्हें अपनी फलाह का सीधा रास्ता नजर आए। दिलों को जोड़ने वाली चीज कुरान है। आप देखिए लोग फिरकों जमातों गिरोहों में बढ़ते हैं ना, अन्ना का बुत नहीं टूटता, मैं मेरी जात मेरा बड़ापन, ऐसे कई साथियों को देखा गया है कि जो अपनी जात में बहुत कॉन्शियस होते हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे खुश भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे गिले शिकवे, मुझे नहीं कहा, मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया, मुझे आगे नहीं किया, मुझे, जब आप पीछे खड़े होकर देखें ना तो पीछे असल में अपनी जात की बड़ाई होती है। इस बारे से आपको मुझे असल में एक ये भी अब चीज़ नज़र आ रही है कि उम्मत बनना है तो अपने ذاتی नफ़े नाम अपनी शोहरत को पीछे कर दो और उम्मत के इज्तमाई फ़ायदे को सामने रख लो। और आप देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले सहाबे कराम समेत जितने भी उस वक़्त के लोकल लोग थे झगड़ते थे। आपने मौलाना हाली की वो पोइम सुनी होगी कि कहीं पानी पिलाने पे झगड़ा, घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, फिरकों में बटी हुई कौम थी, कहीं है फिरके, कहीं है जातें, क्या है दुनिया में पनपने की, क्या यही हैं बातें, ऐसे अशार आपने सुने होंगे ना। किस चीज़ ने अबू बकर और उमर को जोड़ा? पर्सनैलिटीज़ का ज़मीन आसमान का फ़र्क था, चाल का, फ्रीक्वेंसी का, ज़मीन आसमान का फ़र्क था अबू बकर और उमर की। हज़रत इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को ले लीजिए, दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ थी। क्या चीज़ उनको जोड़ती थी? फ़अल्लफ़ा बैना क़ुलूबिकुम, और उल्फत इस कुरान से डलती है। आज जिस गिरोह के हाथों में ये कुरान आ जाता है, उनके दिलों में जो मोहब्बत एक दूसरे के लिए आती है, उसको कभी किसी दूसरी चीज़ से आप नाप ही नहीं सकते। घरों में आज झगड़े क्यों हैं? शोहर बीवी के दिल क्यों कटे हुए हैं? औलादें की बदगुमान है, ससुराल से क्यों झगड़े? कुरान नहीं है। आप कह लीजिए कुरान एक ग्लू है, गम है, जो लोगों को भी जोड़ देता है। दुआ कीजिए कि इस कुरान को आम करें। आज उम्मत के नाम पर भी अगर तफरकेबाजी है तो उसकी भी वजह यह है कि लोग अपने नामों के साथ कई चीज़ों को ले चलते हैं, लेकिन जहां बात उम्मत की आती है, जहां दूसरी बात होती है, उधर एक दूसरे से लड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर पाँचवीं चीज़ जो उम्मत मुस्लिमा को करनी है, और वो क्या है, और जो हकीकत में क्रीम ऑफ दिस पारा है, और वो क्या है? वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैरि व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तुम में से कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर ही होने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं, भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकें। जो लोग ये काम करेंगे वही फलाह पाएंगे। ये क्या काम है? दीन की खिदमत, तबलीग, दावत। देखिए पीछे ज़ाती चीज़ें थी, तकवा आपका अपना साथी है, आप अपनी नमाज रोज़े से ऊपर उठते हैं, आप अल्लाह से डरते हैं, आप एहतसाम बिल्ला करते हैं, लेकिन अब एक लेवल बताया गया। यही वो चीज़ है जिसको आपने दूसरे पारे में पढ़ा था, वकज़ाली का जाल ना को मम्मतम वसता। सहाबा किराम ने नबी सल्लम से पूछा कि आप तो आखिरी नबी हैं, आपके बाद इंसानियत को हिदायत का पैगाम कौन देगा? देखिए कितने क्लियर थे आपके बारे में, उन्होंने ये नहीं कहा नहीं आप कब्र में से भी करते रहेंगे, नहीं आप इधर नहीं होंगे तो उधर भी होंगे, कोई उल्टी सीधी बात नहीं की, क्लीन एंड क्लियर बात थी। कहा अच्छा जी आप नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? कहा मेरी उम्मत करेगी, मेरी उम्मत के उलमा जो हैं वो नबियों के वारिस हैं। आज आप देखिए कि जिनको अल्लाह ने दीन की खिदमत की दावत दी है वो काबिले रश्क लोग हैं, वो काम कर रहे हैं जो अपने दौर में नूह, इब्राहिम, इस्माइल और बड़े बड़े अंबिया करम कर गए। तो क्या काम करना है? दावत दीजिए। यदुना इलल खैर, खैर क्या होता है? नेकी की तरफ दावत देना। आप देखें कि यहां अगर आप देखें तो एक लफ्ज खैर है, फिर एक मारूफ है और एक मुनकर है। खैर क्या है? अल खैर हुवल कुरान व सुन्ना। किसी की बहुत ही खूबसूरत कोटेशन मैंने पढ़ी इसके ऊपर कि कुरान तो कहता है कि खैर की दावत दो, तो हम तो सारी जिंदगी अपनी जमात की दावत देते रहे, अपने गिरोह की, अपने फिरके की दावत देते रहे। अनवर कश्मीरी शाह साहेब, आपने उनका नाम सुना होगा, फिकह हनफी के बहुत बड़े इमाम थे, अल्लाह का तकवा रखने वाले, बहुत खूबसूरत यानी दीनदार थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जो उन्होंने कमेंट दिए, बिस्तरे मर्ग पे थे तो उनका कोई दोस्त उनको मिलने आया और उन्होंने कहा कि यार जिंदगी ज़ाया कर दी। कहा भाई ज़िंदगी अगर आपकी ज़ाया हुई है तो हम जैसों की ज़िंदगी तो बिल्कुल ही बेकार हो गई, आप तो सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत करते रहे। कहते नहीं, अब बिस्तरे मर्ग पे इस बात का ख्याल आया, एहसास हुआ है कि सारी ज़िंदगी इस्लाम की नहीं फिकह हनफी की खिदमत करते रहे। हमारी हर दावत, हमारी हर सोच का आखिर क्या होता था कि फिकह हनफी की तासीर या उसकी फौकियत दूसरे तमाम मसालिक पे कर दें, तब पता चल रहा है कि हमने इस्लाम का नाम कम किया, लोगों को इस्लाम से कम जोड़ा, अपने फ़िरके से ज़्यादा जोड़ा। अब ये सच्चाई है, वो वाकई बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनकी किताबों में लिखी हुई, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ये आज भी मौजूद है किताबों में रेफरेंसेस सारे, तो उनको ये बात आज समझ आ गई है। लेकिन आप देखिए कि इस वक्त अगर जितने मुसलमानों के गिरोह और इदारे हैं, अगर ये सारे मिलकर लोगों को इस कुरान की दावत देने लगें, जहालत दूर हो के ना हो, अंधेरे दूर हों के ना हो, अल्लाह ताला से दुआ है कि फ़िरकों से अल्लाह ताला बचाकर हम सब को सच्चे कुरान और सुन्नत के मानने वाले बना दे। फिर फरमाया कहीं तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो फ़िरकों में बढ़कर खुली खुली वाज़े हिदायत के बाद फिर इख्तलाफात में मुबतला हो गए, जिन्होंने ये रविश इख्तियार की यकीनन वो लोग उस पर सख्त सज़ा पाएंगे। क्या पता चला कि जो कोई फिरके वारियत को उभारता है वो उम्मत को तोड़ता है। याद रखिए आज के दौर में दुश्मनों के अगर नज़रें मुसलमानों पे हैं तो उससे बचने और उसका तोड़ करने का हल क्या है कि हम सब मुसलमान एक बन जाएं, एक गिरोह पे बन जाएं। आज दुनिया में ऐसी जगह मौजूद है कि जहां गैर मुस्लिमों ने कहा कि आप मस्जिद बना लें, ये गवर्नमेंट की तरफ से रिलीजियस प्लेस रखी गई है, आप बना लें, लेकिन मुसलमान सिर्फ इस बात पे मुत्तफिक ना हो सके कि इस मसलिक की मस्जिद बनेगी। कोई कहता था हमारी मैनेजमेंट होगी तो हम मानेंगे, दूसरे ने कहा तीसरी, और वो सब जब ना माने तो आज वहाँ एक बहुत बड़ा ओपरा बना हुआ है, यानी वहाँ एक किस्म की बेढंगी इमारत जिसके अंदर लोग जाके सिर्फ उछला कूदी करते हैं। उन्होंने कहा तुम में से अब किसी को भी नहीं देनी। क्या कहते हैं आप, ये कोई पनपने की बातें हैं? चले भाई बहनों से इख्तलाफात तो होते हैं, लेकिन को अपने भाई बहनों की जड़ें काटता है? आप देखिए जहाँ इख्तलाफ आएगा वहाँ से बरकत जाएगी, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा वहाँ खैर नहीं होगी, जो भाई बहन आपस में लड़ेंगे वहाँ रहमत उठ जाएगी, मेहमान का दिल नहीं लगता उस घर में जिस घर में लोग लड़ते झगड़ते रहें। आज इस उम्मत में क्यों दिल नहीं लग रहा, आज हम अपने मुल्कों में जाते हैं क्यों दिल नहीं लगता, क्योंकि फ़िरका वारियत काटा काटी, उसकी मस्जिद उसकी जमात, वो उसके खिलाफ वो उसके खिलाफ, अल्लाह ताला कहते हैं क्या हो गया तुमको, और अगर ऐसा करोगे तो याद रखो क़यामत के दिन क्या है, यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। फरमाया कि जिन्होंने ये रविश इख्तियार की उस रोज़ वो सख्त सज़ा पाएंगे, जबकि कुछ लोग सुर्ख रूह होंगे, यानी उनके चेहरे मुतमईन होंगे, बहुत खुश होंगे। सुर्ख रूह होना क्या कहते हैं कि आप इस चीज़ में कामयाब हो गए, बड़े पॉलिश फेसेस होंगे, परमानेंट फेशियल हो चुके होंगे उनके, यानी बड़े रिलैक्स फेसेस होंगे। और कुछ लोगों का मुँह काला होगा, जिनका मुँह काला होगा इनसे कहा जाएगा कि नेमत ईमान पाने के बाद भी तुमने काफिराना रवैया इख्तियार किया। ये तीसरा मुकाम है, यहाँ काफिराना रवैये से क्या मुराद है, तफरकेबाजी। हो तुम मुसलमान हो तुम फिरके में अपने आप को कहीं जोड़ते हो, तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम है किधर, तुम अपने आप को बनाते क्या हो, तुम समझते क्या हो? तो आप याद रखिए कि हर काम दीन का काम नहीं होता, बाज़ दफ़ा वो नशुक्री का काम भी बन जाता है। फरमा अच्छा तो अब इस कुफरान नेमत के सिले में अजाब का मजा चखो, रहे वो लोग जिनके चेहरे रोशन होंगे तो इनको अल्लाह के नाम ने रहमत में जगह मिलेगी और वो हमेशा इसी हालत में रहेंगे। ये अल्लाह की इरशादात है जो हम तुम्हें ठीक ठीक सुना रहे हैं, क्योंकि अल्लाह दुनिया वालों पर जुल्म करने का कोई इरादा नहीं रखता, जमीन व आसमान की सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह है और सारे मामलात अल्लाह ही के हजूर पेश होते हैं। दोबारा देखिए अब उसी बात को जिसको आप कहना चाहिए कि और खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने बता दिया, कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अब दुनिया में वो बेहतरीन गिरोह तुम लोग हो जिन्हें इंसानों की हिदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया, तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये अहले किताब ईमान लाते तो इन्हीं के हक में बेहतर था, अगर जिनमें से कुछ लोग ईमानदार भी पाए जाते हैं मगर इनके बेशतर अफराद नाफरमान हैं, ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा बस कुछ सता सकते हैं। अगर ये तुमसे लड़े तो मुकाबले में पीठ दिखाएंगे, फिर ऐसे बेबस होंगे कि कहीं से इनको कोई मदद ना मिलेगी, ये जहां कहीं भी गए इन पर जिल्लत की मार पड़ी, कहीं अल्लाह के जिम्मे या इंसानों के जिम्मे में पनाह मिल भी गई तो ये और बात है, ये अल्लाह के गजब में घिर चुके हैं, इन पर मुख्ताजी और मगलूबी मुसल्लत कर दी गई। और ये सब कुछ इसी वजह से हुआ कि ये अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहे और उन्होंने पैगंबरों को नाहक कत्ल किया, ये इनकी नाफरमानी और ज्यादतियों का इंजाम है। यहाँ आप देखिए कि दोबारा मुसलमानों को ये बात कही गई, अगर आप देखें तो मेरे आपके लिए अल्लाह ताला ने एक ताज रखा, कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत, ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला हमारे सरों पे हीरे मोतियों का ताज रख रहा है। कितनी अजीब बात है, सहाबा किराम कहाँ से आए? हज़रत सुहेब रोम से आए थे, हज़रत बिलाल हबशा से आए थे, हज़रत सलमान फ़ारस से आए थे, लेकिन कितने प्यार से नबी सल्लम ने इन मोतियों को जोड़ा कि एक उम्मत की तस्बीह बनी और वो सब एक मोतियों की लड़ी में पिरोए गए। और कितनी मेहनत की हमारे इस नबी ने इस उम्मत को जोड़ने में, आज हमने इसकी धज्जियाँ बिखेर दी। वल्लाही आज हमने नबी की सारी मेहनतों पे पानी डाल दिया। क्यों? हमने उम्मत को टुकड़ों में डाल दिया। आप देखिए कि हम तो टुकड़ों में बटे हुए, फिर टुकड़ों में बटे हुए हैं। आमतौर पे लफ्ज़ मुसलमान, फिर उसके बाद चार आयमाए कराम, फिर हर आयमाए कराम को मानने वालों के आगे फिर गिरो, फिर वो सारी बांटे नहीं ख़त्म होती तो पाकिस्तानी है कि अफगानी है कि बंगाली मुस्लिम है। चलिए जी, आप पंजाबी मुस्लिम, बंगाली मुस्लिम, ये भी हो गए, आप पाकिस्तानी मुस्लिम बन गए। आप बताइए, आप पंजाबी मुस्लिम है, आप सिंधी मुस्लिम है, आप बलोची मुस्लिम है, आप मुझे बताइए कौन है? चले जी, हम कहते हैं हम पंजाबी मुस्लिम है, तो क्या पंजाबियों की 101 जातें नहीं है? और आई मुस्लिम है कि गुज्जर हैं कि शेह हैं? मुझे बताइए कि जो कैंची लेकर इतने ग्रोहों में उम्मत को बांट दे, क्या दीन का काम होगा? आज क्यों नहीं हो रहा? हर बंदा कहता है मुझे अपने आप से करना है। आज हमने वो कॉमन गोल खो दिया है। सीधी सी बात है कि खेल के मैदान में एक गेंद होती है ना, तो 10 खिलाड़ी उसके पीछे भागते हैं, आखिर में कुछ ना कुछ हो जाता है। हमने आज वो गेंद खो दी है, और वो गेंद क्या थी कि लोगों को अल्लाह से जोड़ना। उम्मत को जो मनहज दिया गया था वो ये था कि तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर यदूना इलल खैर। आज खैर की तरफ दावत दिए बगैर, और या मारूफ चीज़ें यानी अच्छी चीज़ों का हुक्म देना, बुराई से रोकना नहीं, हमने बस चंद पसंदीदा चीज़ों पे रोक टोक करने का नाम दीन रख दिया। किसी को जो चीज़ बुरी लगी उसने सारी तकरीर, सारे दरसों का रुख ही उसी पे कर दिया। जिसको जहां दिल करा खड़े हुए लोगों को जलील करके रख के छोड़ दे। तरतीब नहीं रखी, पहले अल्लाह से जोड़ा ही नहीं है और अल्लाह की हुक्म सुनाने शुरू कर दिए। शैतान की बुराई बताई नहीं और सारे गाने फिल्मों को हिट करके उनके ऊपर जिस्मा कर दिया। बच्ची की हया उभारी नहीं है और आपके गलत कपड़ों पे तनकीद करनी शुरू कर दी। ये टुकड़ों में बटी हुई तबलीग ने आज उम्मत को तोड़ा हुआ है। वल्लाही, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, फौरन पकड़ के आपको गोली भी दे देता है, इंजेक्शन भी लगाता है और पेट भी काट देता है। नहीं, वो कहते पहले बैठो, घंटा लेकर आपके पूरी हिस्ट्री लेता है, बचपन में क्या हुआ, अब क्या हुआ, पेट में दर्द है, हाथ में दर्द। वो घंटा डेढ़ लगाकर आपकी डायग्नोस क्यों करता है, और उसके बाद एक छोटी सी गोली देता है, कहता है कल आना, अगर फर्क पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और दूंगा। एक डॉक्टर एक हिकमत के साथ, एक तरीके के साथ दवा देता है, सेहत हो जाती है। और आपने ऐसे डॉक्टर्स भी देखे होंगे कि जो थोड़ी बीमारी को बढ़ा देते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा का हाल कुछ ऐसा ही है। हमने आज दीन के नाम पे भी लोगों को कुछ और ही परेशान कर दिया, और सारा इल्ज़ाम पकड़ के हमने गैर मुसलमों पर डाल दिया, चूंकि वो दुश्मन है, चूंकि वो हमारे मुखालिफ है। कभी नहीं सोचा आपने कि बड़ी ताकतों से बड़ी भी तो ताकत कोई है ना? सुपर पावर है तो सुप्रीम पावर नहीं है? आप बताइए, उस दौर के रोम, फारस, ईरान जो बड़े बड़े मुल्क थे, उनके मुकाबले में एक छोटी सी रियासत जो अपने कदमों पे खड़ी नहीं हो सकती, जिनके पास कपड़े पूरे नहीं है, जिनकी तलवारें टूटी हुई हैं, जो लकड़ियों के ऊपर कपड़ों की धज्जियां बांध के दुश्मनों के लिए निकलते थे, अल्लाह मदद देता था क्योंकि कॉमन गोल था। आज हमें पता ही नहीं है तबलीग करनी भी किस चीज़ की है। और याद रखिए, जब से उम्मत की ये वहदत टूटी, जब से ये टीम वर्क टूटा, आज देखिए हर बंदा अपने हिसाब से काम कर रहा है, और जिसका जो दिल करता है वो उसको वैसे ही समझता है। तो ये पारा दिल का दर्द पैदा कर देता है कि अल्लाह हमें समझा। एक तो जो कुछ कर ही नहीं रहे उनको तो पीछे कर दीजिए, वो तो मस्त है, या कमा रहे हैं या उजाड़ रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनको नहीं तरीका आता। गोया के डॉक्टर्स के पास मरीज जा रहे हैं फिर भी सेहत नहीं हो रही। तो लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि हम दोबारा अपने आप को वापस लेकर चलें, वापस हम अपनी इसलाह करें कि मालिक तू हमें दोबारा तरीक़ाकार सिखा, हम समझे। और आप इंशाल्लाह देखिए कि जब आपके दिल जुड़ जाएंगे ना आपस में, काम सारे आसान होंगे। इस वक्त हमें एक ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है जो सारे दीनदारों के दिल जोड़ दे। कोई किसी के खिलाफ बात नहीं करे, कोई किसी की वीडियोस ना शेयर करे, कोई किसी की धज्जियां ना उड़ाए। आज लोग ऐसे उलमाए दीन को पकड़ कर पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं कि वो छींक भी मारते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो बुलेटिन जारी होने लग जाते हैं। तो पहले मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। जिस शख्स का दिल नरम नहीं है, याद रखिए, जिसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी नहीं है, वो कभी दीन का काम नहीं कर सकता। वो नमाजें पढ़ सकता है, वो रोजे रख सकता है, वो हज कर सकता है, लेकिन दीन का काम नहीं कर सकता। उसके लिए अना छोड़नी पड़ती, उसके लिए राय छोड़नी पड़ती, उसके के लिए ना चाहते हुए भी कई बातों को मानना पड़ता है कि इट्स फाइन। बस आप देखिए कि अगर इस डोर से बाहर जाना है तो मुझे यहाँ से उतर के वहाँ तक जाना पड़ेगा ना, तो मैं आपसे कहूँ नहीं, मैं इतनी उतर के वहाँ नहीं जा सकती, इधर ही एक दरवाज़ा खोलें फिर मुझे जाना है, क्योंकि मेरे लिए इसमें सहूलत है। अब मेरे लिए ये पीछे दीवार से गुजरना सहूलत है, लेकिन आप सबको और इस हॉल वालों को मैं मुश्किल में डाल दूं, क्या ये अकलमंदी का काम होगा? आज हम लोग ये सोच रख कर दीन के लिए चलते हैं, मेरे लिए सहूलत किसमें है, और उम्मत की सहूलत नहीं देखते। बहुत दिल से गहराई से दुआ कीजिए कि अल्लाह आज हमारी इसलाह करते हैं, वरना याद रखिए अल्लाह ने तो ये खबर ऊपर ही दे दी है कि कुछ चेहरे सफ़ेद और कुछ स्याह। ये किनके चेहरे हैं? काम करने वालों के चेहरों की स्याही सफ़ेदी की बात है। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। फिर इसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कुछ और खूबसूरत बातें भी बता दी, और वो क्या हैं कि जब ये सारी चीज़ें दूसरों की नज़र से हम देखते हैं तो उनकी अच्छी चीज़ों को भी तो देखो। अब अगली आयत में अहले किताब की खूबियों का तज़किरा है, फरमाया आयत 113, लैसु सवा मिन अहलिल किताबी, मगर सारे अहले किताब यकसा नहीं हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राह रास्त पर कायम हैं, रातों को अल्लाह की आयात पढ़ते हैं और इसके आगे सजदा रेस होते हैं, अल्लाह और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं, ये सालेह लोग हैं, और जो नेकी भी ये करेंगे इसकी ना कदरी ना की जाएगी। अल्लाह परहेजगार लोगों को खूब जानता है, रहे वो लोग जिन्होंने कुफर का रवैया अख्तियार किया, तो अल्लाह के मुकाबले में इनको ना तो इनका माल कुछ काम देगा ना औलाद, वो तो आग में जाने वाले लोग हैं और आग ही में हमेशा रहेंगे। जो कुछ वो अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी में खर्च कर रहे हैं उसकी मिसाल इस हवा की सी है जिसमें पाला हो, और वो इन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया और इसे बर्बाद करके रखते, अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, दर हकीकत जो खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हक को पहचान गए थे, जिन्होंने हकीकत में वाकई कोशिश की थी कि अल्लाह के नबी सल्लम के पीछे लग कर काम को चलें। और यहाँ आप देखिए खूबी, युसारे उन फिल खैरात, हर पारे में आपको एक आध ऐसा जुमला जरूर मिलेगा कि जिसमें नेकियों की तरफ भागो। पीछे क्या पढ़ा था दूसरे पारे में? फस्तबिकुल खैरात, यहां क्या है? युसारे उन फिल खैरात। असल ये चीज है, आप देखिए कि दीन के लिए निकलते हैं ना, उसके लिए आपको पहले तो भाग भाग के अपने घर के काम करने पड़ते हैं, कई चीज़ें समेट के आप यहाँ आते हैं ना, फिर भगा भगा के गाड़ियाँ लानी पड़ती हैं, फिर यहाँ आकर आप देख रहे होते हैं कि हम जल्दी से अपने आप को तैयार रख लें ताकि हमारी वजह से किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, फिर सुनने के दौरान आप अपने जहन को पूरा हाजिर रखते हैं, इतनी भाग दौड़ होती है, फिर दिल खुलते हैं, कितनी भाग दौड़े होती हैं आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आपके इन कामों के पीछे सैकड़ों सिस्टर्स हैं जो हर चीज़ को लेकर बैठी होती हैं, तो क्या अल्लाह ताला उस भागदौड़ को कबूल नहीं करेगा? और मैंने देखा है वल्ला ही, अल्लाह ने जिससे अपने दीन का काम लेना होता है ना, बीमारी में भी ले लेता है, सेहत में भी ले लेता है, बुढ़ापे में भी ले लेता है, कुंवारेपने में भी ले लेता है, बच्चों वालों से भी ले लेता है, जो बेचारे बगैर बच्चों के हैं, जो कई नफसियाती उलझनों का शिकार है उनसे भी ले लेता है। तो ये चीज़ अपने लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है, युसारे उन फिल खैरात, अल्लाह से दुआ करें। आज यहाँ रोज़े की हालत में बैठे हुए अपने लिए दुआ करें कि ऐ मालिक मुझे भाग दौड़ वाला बना, मेरी सुस्ती दूर कर दे। अब देखिए टाइम वेस्टर्स में से एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर ये भी होता है कि इंसान सुस्ती से काम करता है, मीन में चिन मिन खोल रहे हैं, अलमारी खोल रहे हैं, रख रहे हैं, चूल्हा खोल रहे हैं, इतनी देर में मेहमान आके चला जाए आपकी चाय भी नहीं पकी। तरीके से काम कीजिए, ये बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होना, ये ठीक हो जाए फिर कर लूँगी, ज़रा ये हालात ठीक हो जाए, कभी भी नहीं होना। अगर सहाबा और नबी सल्लम हालात के ठीक होने का इंतज़ार करते तो वल्लाह ही एक लफ्ज़ ना करके जाते। दीन वालों के हालात कभी ठीक नहीं होते, सीधी सी बात है, दीन हमेशा एडवर्स कंडीशंस में ही होता है, दीन हमेशा उलझे हुए हालात में करने का नाम है, जो अपनी नब्जें टटोलते रहते हैं वो कभी भी काम नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ने यहाँ ये बता दिया। और याद रखे जो अपने गमों में मुबतला रहेगा वो दूसरे का गम कहाँ पालेगा। हमारे आज का टाइम वेस्टर है ही गम, यहाँ इशारा कर देती हूँ, हम बड़े हैं, दुखी बड़े हैं, परेशानियाँ बड़ी हैं, हर वक्त परेशान है। अभी इंशाल्लाह एक जंग का किस्सा शुरू हो रहा है, आप देखेंगे गमों में से गम टूटे मुसलमानों पे, लेकिन मकसद से दूर नहीं हुए। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हमारी ज़ात से ऊपर उठाकर दीन का गम लगा दें। बड़े खुशकिस्मत है वो लोग जिनको दीन का गम लग चुका है, इस गम में जिए, इसमें मरें, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुबहाना ताला आपके बच्चों के भी काम खुद कराएगा, आपके बच्चों के रिश्ते भी होंगे, आपके मर्द भी आपसे खुश रहेंगे, आपको जो खैर नहीं आज तक मिली वो सब कुछ मिलेगी। और याद रखिए सारी दुनिया अपने लिए जीती है, लेकिन इस उम्मत ने लोगों के लिए जीना है। कुन तुम खैर उम्मतें اخرجت للناس. اور جب مسلمان اتنے کننگ اور اتنے فکر مند ہو جائیں گے نا, اللہ اس کے بعد مسلمانوں کی حالت بدل دے گا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں یہ وقت لے کر آئے. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس ابھی نہیں پھر صحیح نیکسٹ ٹائم, وہ نیکسٹ کبھی نہیں آتا. اس وقت ہم مسلمانوں کو اپنی ذات پہ کندھوں پہ یہ ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے کہ اگر تبدیلی آنی ہے, اگر مسلمانوں کو ہم نے کچھ نہ کچھ دکھانا لینا دینا ہے, تو وہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں گے. آگے چلتے ہیں, نیکسٹ تھنگ, اگلی چیز کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ, وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے. دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے وارن بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد بس ان کو آہستہ آہستہ سے کیئرفل کیا جا رہا ہے, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو بدتمیز کر دو اور بد لحاظ کر دو اور ہر ایک کے اوپر تمہیں شک ہی ہونے لگے. فرمایا تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے, ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے, اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں, اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. کتنی بڑی سچائی ہے الودود نے جو کھول کے رکھ دی. آج آپ دیکھیے کہ مسلم بھاگ بھاگ کے نان مسلمز کے کلچر, ان کے رسم و رواج, ان کے طور طریقوں کو اپناتے ہیں. کبھی آپ نے ان کو بھی اپناتے دیکھا؟ مسلمان کرسمس پارٹیز مناتے ہیں, بہت کم دیکھا ہوگا کہ نان مسلمز بھی عید کی پارٹیاں منائیں, وہ بھی آپ کے ساتھ روزے رکھیں, وہ آپ کے ساتھ عقیقہ مناتے نہیں مناتے. ہم بھاگ بھاگ کے ادھر جاتے ہیں, وہ نہیں جاتے, حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا, مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو, اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک کو جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے, اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں, مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی, بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرو. اس کو ہائی لائٹ کیجئے, یہ ہے اصل میں آج کے دور میں کرنے کا کام. ہم مسلمانوں کو باہر کے ریئیکشن, نیگیٹو سینٹنسز اور پروپیگنڈے کے جواب میں کرنا کیا ہے؟ تصبروا وتتقوا. 120 آیت کے اندر یہ دو لفظ چھپے ہوئے ہیں, تصبروا وتتقوا. صبر کیا ہے؟ دین پہ جم جاؤ. تقوی کیا ہے؟ حلال حرام کی فکر کرو. صبر کیا ہے؟ ڈونٹ بی ریئیکشنری, بڑے بڑے جملے نہ بولو, ان کو اور نہ چڑچڑاؤ. تمہارا کوئی ایسا جملہ جس کو سن کر باقی مسلمانوں کے اوپر وہ اور ظلم و ستم کرنے لگے وہ نہ کرو, بلکہ اپنی نمازوں کی تو اصلاح کرو. پہلے تم اپنے قبلے تو سیدھے کرو, ابھی تم اپنے حلال حرام کی تو فکر کرو. فرمایا لا یضرکم کیدہم شیئا, اور ان کا ضرر تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گا. ان اللہ بما یعملون محیط, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر حاوی ہے. دیکھیے اللہ سب سے بڑا ہے نا, آپ کو اس میں راز ملا. صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ تصبروا وتتقوا. اتنی اسٹرانگ مینجمنٹ تھی, اتنی اسٹرانگ لیڈرشپ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, 13 سال تک چوٹیں سہی, ظلم سہے, ریتوں پہ لٹائے گئے, کوئی ایک جا کر کسی کافر کا منہ نہیں توڑ کر آیا. کیوں؟ تصبروا وتتقوا. تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, اس وقت کس قسم کا موقع بنا ہوا ہے, تم نے کیسے یہ سارا کچھ کرنا ہے. یہ کر کے پھر آگے بات ہوتی ہے. آپ دیکھیے کچھ کام صرف لیڈرز کے کرنے کے ہوتے ہیں, اگر فالوورز بھی وہ کرنے لگ جائیں نا تو ان کو سچتا نہیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کچھ کام گھر میں ماں باپ کے کرنے کا ہوتا ہے. آپ چھوٹے چھوٹے بچے اگر وہ باتیں کہنے بولنے لگ جائیں تو کتنے برے لگتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو بڑے ہوشیار سے لگتے ہیں, حالانکہ بچوں کے منہ سے تو ہمیشہ معصومیت اچھی لگتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں اچھی لگتی ہیں. بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے کہ آج کے دور میں مجھے آپ کو, خاص طور پہ ہم اپنے اوپر لے کر سوچیں کہ ہم خواتین ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھروں کی اصلاح, نسلوں کی پرورش کی ذمہ داری دی ہے, اور ساتھ ہی کہا کہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے تم اپنے اپنی اصلاح کرو اور اپنے ارد گرد کی اصلاح کرو. اسی پہ پڑھ کے اگر میں اور آپ اپنے آپ کو صحیح کر لینا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اصلاح فرما دے.